ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कल प्रतिनिधि सभा में लेंगे विश्वास मत। प्रधानमंत्री को विश्वास मत देने के लिए एमाले ने अपने सांसदों को किया व्हिप जारी। विश्वास मत के संबंध में निर्णय लेने के लिए कांग्रेस ने कल के लिए बुलाई है संसदीय दल की बैठक। लुम्बिनी और बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कल ही अपने अपने प्रदेश सभा में लेंगे विश्वास मत। चितवन के सिमलताल भूस्खलन के कारण त्रिशूली नदी में लापता हुए बसों और यात्रियों की खोज में भारतीय टोली हुई परिचालित। और आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में 105 लोगों की मौत। पूरे देश में कर्फ्यू लागू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कल प्रतिनिधि सभा में विश्वास का मत लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली कल की प्रतिनिधि सभा बैठक में विश्वास मत के लिए प्रस्ताव करेंगे। ये जानकारी संसद सचिवालय की संभावित कार्य सूची में है। बता दें कि प्रतिनिधि सभा की बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी। इस बीच नेकपा एमाले ने पार्टी के सांसदों को कल प्रतिनिधि सभा में अनिवार्य उपस्थित होने और प्रधानमंत्री ओली को विश्वास मत देने के लिए व्हिप जारी की है। एमाले संसदीय दल के मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ने व्हिप जारी किया। इसी विषय में फैसला लेने के लिए नेपाली कांग्रेस के कल संसदीय दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक कल दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री ओली के विश्वास मत सहित विभिन्न समसामयिक विषयों में विचार विमर्श और निर्णय होंगे। बता दें कि नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रधानमंत्री को विश्वास मत न देने का फैसला ले चुकी है। लुम्बिनी और बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री कल अपने अपने प्रदेश सभा में विश्वास मत लेने जा रहे हैं। कल दोपहर 1 बजे होने वाली लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक में मुख्यमंत्री जोख बहादुर महरा और बागमती प्रदेश सभा में मुख्यमंत्री शालिग्राम जम कटेल विश्वास मत का प्रस्ताव करेंगे। केंद्र में सत्ता समीकरण बदलने के बाद सरकार में साथ रही नेकपा एमाले के समर्थन वापस लेने के कारण लुम्बिनी के मुख्यमंत्री महरा और बागमती के मुख्यमंत्री जम कटेल को विश्वास मत लेना पड़ रहा है। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने काठमांडू वासियों को मिलमची का पानी उपलब्ध न होने तक वैकल्पिक स्रोत से पानी वितरण करने का निर्देश किया। आज सुंदरी जल स्थित मेलमची सुरंग आउटलेट का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने बरसात में मेलमची का पानी नहीं लाए जा सकने के दौरान बागमती का और जमीन के नीचे का पानी प्रशोधित करके वितरित करने का आग्रह किया। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड के सिमलताल में भूस्खलन के साथ त्रिशूली में गिरकर लापता हुई 2 बसों और उनमें सवार यात्रियों की खोज करने के लिए भारतीय टोली को परिचालित किया गया है। भारतीय नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की 12 सदस्यों की टोली आज से लापता बसों और यात्रियों की खोज तलाश में जुटी है, जिसमें 4 गोताखोर हैं। ये जानकारी चितवन के प्रमुख जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने दी। बीते आषाढ़ 28 गते शुक्रवार को बीरगंज से काठमांडू आती हुई और काठमांडू से रौतहट जाती हुई बस चितवन के सिमलताल में भूस्खलन के साथ त्रिशूली में गिरकर लापता हो गई। अब तक 25 लोगों के शव मिल चुके हैं, जिनमें से 17 की शिनाख्त हो चुकी है। वहीं 2 बसों समेत 37 यात्रियों की स्थिति अब तक अज्ञात है। प्रजातांत्रिक विचार समाज ने नवगठित सरकार में आबद्ध दलों को आधिकारिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक करने का आग्रह किया है। आज प्रजातांत्रिक विचार समाज द्वारा जननायक बीपी कोइराला के 22वें स्मृति दिवस के संदर्भ में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के नेता के बीच हुए प्रतिबद्धता को आधिकारिक निर्णय सहित सार्वजनिक करने के लिए समाज ने मांग की है। मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल ने कहा कि दलों के बीच हुई प्रतिबद्धता और सहमति को संबंध दलों के बीच के आधिकारिक निर्णय के सार्वजनिक किया जाना चाहिए। समाज के पूर्व अध्यक्ष डॉ केदार नरसिंह केशी ने, समाज के अध्यक्ष कुलचंद्र बागले ने कहा कि सरकार ने आसीन दलों के नेताओं के बीच हुई प्रतिबद्धता सार्वजनिक और पारदर्शी होनी चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट ने योगदान प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशभक्त राजनेता कीर्तिनिधि विष्ट नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है। आज नई प्रकाशन द्वारा काठमाण्डु में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनूप राज शर्मा, शिक्षाविद प्राध्यापक डॉ सुरेश राज शर्मा और वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डॉ वासुदेव त्रिपाठी ने सामूहिक रूप में उक्त ग्रन्थ का लोकार्पण किया। मौके पर प्राध्यापक केशव सुवेदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री विष्ट राजनीति और नैतिकता को जोड़कर चलने वाले नेता के रूप में स्थापित थे। मानसूनी आपदा में जान गंवाए 69 लोगों के परिवारों को मापदंड अनुसार 2,00,000 रूपये के हिसाब से राहत वितरण के लिए जिला आपदा व्यवस्थापन कोष से निकासी की गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के मुताबिक अभी तक 69 मृतकों के परिवारों के लिए 1,38,00,000 की निकासी हुई है और उस रकम में से अधिकतर जिले प्रक्रिया पहुंचाकर पीड़ित परिवारजनों में राहत वितरण कर चुके हैं। बता दें कि मानसूनी की अवधि में प्राकृतिक आपदा में अब तक 125 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चितवन में बस और ट्रक एक आपस में टकराने से 16 लोग घायल हुए हैं। भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 29 स्थित नारायणगढ़ मुगलिक सड़क खंड के भतेरी में वह हादसा हुआ है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय चितवन ने दी है। डोलपा जिला के उत्तरी क्षेत्र में रहे मेरिमला नाका 6 सालों के बाद खुलने जा रहा है। चीन का सीमा पर मौजूद वह नाका कोरोना महामारी के समय से बंद था। बता दें कि नाके को इसी श्रावण के 17 गत्ते से खोलने की तैयारी की जा रही है। यह जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी तुलसी प्रसाद दहाल ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी करने और राजधानी में सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद सत्तारूढ़ आवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कदार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। कई दिनों से चल रही घातक झड़पों के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेख हसीना सरकार ने सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दिया है। बांग्लादेश में शुक्रवार को न्यूज चैनल बंद रहे और दूरसंचार व्यापक रूप से बाधित रहा। हालांकि मनोरंजन चैनलों का प्रसारण सामान्य रूप से जारी था। कुछ समाचार चैनलों पर संदेश चल रहा था कि वे तकनीकी कारणों से प्रसारण करने में सक्षम नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा से कई भारतीय छात्र भी प्रभावित है। मेघालय के मुख्यमंत्री कुनराड संगमा ने बताया कि पड़ोसी मुल्क में फंसे 405 भारतीय छात्रों को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाल लिया गया है। देश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को फिर हिंसा हुई। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। एक अखबार की माने तो सरकार को व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार देर रात सेना बुलानी पड़ी थी। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार इस सप्ताह झड़पों में लगभग 105 लोग मारे गए हैं और 2,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कल लेप प्रतिनिधि सभा में लेंगे विश्वास का मत। प्रधानमंत्री को विश्वास मत देने के लिए एमाले ने अपने सांसदों को किया व्हिप जारी। विश्वास मत के संबंध में निर्णय लेने के लिए कांग्रेस ने कल के लिए बुलाई है संसदीय दल की बैठक। लुम्बिनी और बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कल ही अपनी अपनी प्रदेश सभा में लेंगे विश्वास मत। चितवन के सिमलताल भूस्खलन के कारण त्रिशूली नदी में लापता हुए बसों और यात्रियों की खोज में भारतीय टोली हुई परिचालित। और आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में 105 लोगों की मौत, पूरे देश में कर्फ्यू लागू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।